ओम शांति। हम सुबह से अलग अलग प्रकार से सुन रहे हैं परमात्म शक्तियों द्वारा महापरिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन, और अब का जो सत्र है उसका विषय है परमात्म शक्तियों द्वारा व्यापार में परिवर्तन एवं सफलता। तो ये तीनों बातों को अलग अलग तरीके से हम सुने, लेकिन उसका थोड़ा विश्लेषण किया जाए कि सफलता क्या होती है, व्यापार में परिवर्तन कैसे करें, और साथ साथ में परमात्म शक्तियों का उसमें कैसे उपयोग करें। तो इसके लिए हमारे साथ में इस चर्चा सत्र में हमारे वरिष्ठ भ्राता जी और हमारी आदरणीय बहनें हैं, तो हम उनके साथ में ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भ्राता जी मदनलाल शर्मा जी, आदरणीय योगिनीबेन जी तथा आदरणीय गीताबेन जी, आप मंच पर उपस्थित हो। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत गहन विषय है, इसे समझना कोई दो या तीन दिन में हम उसके महारथी हो जाए वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे साथ में तीनों वरिष्ठ अनुभवी, अनुभव की अथॉरिटी वाले महारथी है, तो हम कोशिश करें कि हम उनसे जाने कि सफलता पहले क्या है, व्यापार में उसका परिवर्तन कैसे करें, और उसमें परमात्म शक्तियों का क्या रोल है। शर्मा जी पिछले 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और शायद उनको देख के आप किसी को भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं होगा। शर्मा जी बता सकता हूं? वो हमारे रत्न मोहिनी दादी जी के जैसे आज भी बहुत ही यंग है, खाली 83 उम्र के हैं। और यही ये राजयोग की एक उपलब्धि है, यही एक परमात्म शक्तियों की उपलब्धि है। तो हम उसके ज्ञान का, उनके अनुभव का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ में हमारी आदरणीय योगिनी बहन जी है जो पिछले 40-45 सालों से समर्पित रूप में इस संस्था को सेवा दे रही है। जैसे आपने उनके परिचय में कल सुना था कि न केवल 23 राजयोग सेंटर की वो संचालिका है, बट फिर भी उसके अलावा वो बंबई की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की वो ऑनररी डायरेक्टर भी है, और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती है। और अनुभवी हमारे साथ में है गीता बहन जी, जो राजयोग शिविर का हमारे बिजनेस इंडस्ट्री विंग का मधुबन से कोऑर्डिनेट करती है, और उसके पहले वो इस परिसर की, ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स की पूरे एकोमोडेशन वगैरह की संचालन कर रही थी। तो उनका भी अनुभव बहुत ही गहन है। तो हम सभी मिलके उनसे, मेरे पास में जो 5-6 प्रश्न थे, एक बिजनेसमैन के नाते तो मैंने ये प्रश्न उनको पूछना चाहूंगा, और अगर आप में से किसी को कोई खास प्रश्न हो इस विषय के बारे में तो अपने सेंटर का नाम और बहुत क्लियर भाषा में अपना प्रश्न लिख के आप भी यहाँ भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे उसका उत्तर जानने की। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न दीदी योगिनीबेन जी आपसे रहेगा कि हम इसकी जो विश्लेषण करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सफलता, और हम लौकिक में यानी कि दुनिया में सफलता के कई मायने रखते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, काफी सारा प्रॉफिट कमा लिया, बहुत बड़ा घर हो गया, समाज में नाम हो गया, मान शान हो गया, और पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, लोग मुझे कई बड़ी सभा में बुलाए, क्या ये सफलता है? या आध्यात्मिक ढंग से आप सफलता को कोई और तरह से देख रहे हैं कि किसे हम सफलता कहें? आपकी क्या व्याख्या है?
ओम शांति। बहुत अच्छा सवाल किया है हरीश भाई ने। तो डेफिनेशन, वैसे तो हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य तो यही रहता है ना कि हमारे जीवन में सुख शांति और हमको सफलता मिले, ठीक है ना? यही लक्ष्य रहता है ना, चाहिए तो यही। और सफलता भी किन किन बातों में चाहिए लोगों को? चार बातों में चाहिए। एक तो व्यक्तिगत सफलता चाहिए, दूसरा सामाजिक सफलता चाहिए, तीसरा पारिवारिक सफलता चाहिए, और चौथा व्यवसायिक सफलता, बिजनेस में सक्सेस जरूरी है, चाहिए। तो जब हम सक्सेस शब्द को लेते हैं तो मैं हमेशा कहती हूं कि यही इसकी डेफिनेशन है, सात अक्षर का बना हुआ है, SUCCESS, ठीक है ना? तो S फॉर सेटिंग गोल। हमारे जीवन में हमको अपने गोल को सेट करना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। एक बार हम यूथ जो थे ना उनका सर्वे किया और उनको पूछा गया कि व्हाट आर योर गोल, आपका गोल क्या है? तो 70 से 80% ने यही जवाब दिया कि बहुत पैसा कमाना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा फ्लैट लेना है, कार लेनी है, बड़ी फॉरेन के प्रोग्राम बनाने हैं, ऐसे अलग अलग सब बताते गए। तो हम गोल किसको कहेंगे? आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी थे, उसने अपने गोल को, सफलता का रहस्य क्या, अपने गोल को सेट किया हुआ था। जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उसकी हिस्ट्री में सुना होगा, तो वो गाड़ी में पेट्रोल डालते थे। उस समय उसने ये नहीं सोचा कि मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा, उसने क्या सोचा कि मैं पेट्रोल रिफाइनरी बनाऊंगा, तो बनाई। गोल जो है, लक्ष्य जो है हमारा, वो बहुत पावरफुल चाहिए। एक ऐसे ही बोधदायक कहानी है कि एक राजा ने सोचा कि मुझे प्रधानमंत्री चाहिए, तो उसके लिए बहुत लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पैलेस में जो रात दरबार, जो हॉल होता है दरबार हॉल, वहां जो पहला सुबह 4 बजे पहुंचेगा ना, उसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो लाइन लग गई उसकी सुन के। तो लेकिन उसने थोड़े अट्रैक्शन रखे थे, रास्ते में पहुंचने से पहले सब अट्रैक्शन रखे थे। तो जैसे ही लोग आने लगे तो देखा उन्होंने कि वहां बहुत अच्छा संगीत था, तो कई लोग सुनने में ही बिजी हो गए। उसमें से थोड़े लोग आगे गए तो देखा बहुत अच्छी अच्छी सुगंध, परफ्यूम, फ्लावर्स, सुगंधीदार, तो कई लोग उसी में ही रह गए। फिर और आगे गए तो चलचित्र, ये वो सब ड्रामा चल रहा था, तो लोग वहां खड़े रह गए। इस तरह से लोग बढ़ते गए, लास्ट में क्या हुआ, एक ही व्यक्ति ऐसा था जो वहां पहुंचा, क्योंकि उसने गोल रखा हुआ था, मुझे ये सब बातों में नहीं फंसना है, मुझे दरबार हॉल में सुबह को 4 बजे पहुंचना है। तो गोल को सेट करना जीवन में बहुत जरूरी है। यू फॉर यूटिलाइज द टाइम, समय जिसको हम कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारी प्रायोरिटी है ना वो क्या है, हमें देखना चाहिए पहले कौन सा कार्य हम पहले करें। देखो आज सुबह का भी समय गया, वो वापस आएगा। तो समय, संकल्प, श्वास, ये हमारा खजाना है। समय तो सबसे बड़ा खजाना है, जो गया वो वापस नहीं आने वाला है। हम कोई भी कार्य करें, उसको एक डेडलाइन करें, ये कार्य हमको इतने दिन में पूरा करना है, ये जरूरी है। तो यूटिलाइज द टाइम। सी फॉर करेज, जिसको हम कहते हैं हिम्मत। आप बिजनेस में चाहे कोई भी कार्य करो, आप एक कदम आगे बढ़ो तो वो 1000 कदम आपको मदद करने आएगा, पर आप एक कदम तो आगे बढ़ो, हिम्मत तो चाहिए। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट था ना, वो आल्प्स पहाड़ चढ़ रहा था, तो एक बुजुर्ग महिला वहां नीचे बैठी थी, उसने पूरे सैन्य के साथ वो था, तो उसने उसको रोका और उसको कहने लगा कि देखो मैं तेरे, उसको नहीं मालूम था ये नेपोलियन है। उसने बोला मैं आपको कहती हूं इतने लोग गए हैं, कोई वापस नहीं आया है, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आप ये है ना नहीं जाओ, नहीं बच सकोगे आप। तो नेपोलियन ने कहा कि माता तेरे को मालूम है मैं कौन हूं, मैं तो नेपोलियन बोनापार्ट हूं, और मेरे लिए कोई अशक्य चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अशक्य चीज मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, और मैं तो जाऊंगा। और सचमुच वो सारे सैन्य के साथ चढ़ भी गया और उसने जीत भी लिया, जीत को पाया। तो जिसको कहा जाता है हिम्मत बहुत जरूरी है, करेज। उसी तरह सी माना क्रिएटिविटी, कोई भी कार्य आप करो तो कैसे करना है, हमको रचनात्मक कार्य जो है वो हमको करना है। ई फॉर एफोर्ट, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। जीवन में पुरुषार्थ जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो वो कार्य होने वाला है, दूसरे पर जो डिपेंड रहेगा तो कार्य होगा नहीं, होने वाला है। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है जीवन में पुरुषार्थ करना। एक बार ये पक्षियां यहां बहुत घूम रहे हैं ना, छोटे छोटे आप देखते हैं ना, छोटी छोटी चिड़िया, तो ऐसा ही पक्षी था, वो अपने पेड़ पर था और उसके 2 बच्चे रहते थे। तो वो जाती थी बाहर, 2 बच्चे वहां रहते थे, वो खाना लेने जाती थी, तो नीचे से एक खेडूत और उसका बच्चा निकला बात करते करते। उसने, बाप ने उसके बेटे को बोला कल तुम अपने सारे काका मामा चाचा को बुला के लाना, ये खेत में इतना अच्छा ये सब धान्य पक गया है तो फसल को काटना है, तुम सबको बुला के लाना। बोला ठीक है, वो दौड़ के गया। तो वो जब माँ आई बच्चों की, पक्षी की, लावरी बोलते हैं उसको, तो उसने बोला बच्चों ने कि अरे ये तो कल अपने को जाना पड़ेगा अभी इधर से, ये तो काटने वाले हैं सारा खेत में सब। तो बोला नहीं नहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने बताया कि ये अड़ोसी पड़ोसी, अरे काका मामा चाचा आने वाले हैं सारे। अच्छा, दूसरे दिन कोई आया ही नहीं। फिर दूसरे दिन वो खेडूत और वो बच्चा बात करते करते जाता है कि ये देखो कोई सगे वाले काम के है ही नहीं, कोई तो आया नहीं, अभी तो अड़ोसी पड़ोसी को बुला के ला, वो जरूर आएंगे मदद करेंगे। तो उसने बच्चों ने बोला, तो वही जवाब दिया कोई बात नहीं है, आज भी हम अपना घर बदली नहीं करेंगे। तो सचमुच ऐसा हुआ, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आया। तीसरे दिन फिर बाप और बेटा बात किया, हम अपना ही पुरुषार्थ से हम खुद ही काम करेंगे, करके एक दिन हमको ज्यादा हो जाएगा लेकिन हम ही करेंगे। जब बच्चों ने उसको ये सुनाया लावरी को, उसने बोला अभी हम जल्दी से जल्दी अपना घर जो है ना वो चेंज करते हैं। तो ये है कि हमको डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, हमको अपना पुरुषार्थ खुद को ही करना चाहिए। फिर आता है एस, एस फॉर सेंसिबल प्लानिंग। ये बहुत जीवन में जरूरी है, हमको टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं। बिजनेस में सफलता तब ही मिल सकती है जब हम टीम स्पिरिट में काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हमारी बहन है, एक बहुत अच्छी कहानी बताती है कि टीम स्पिरिट माना क्या, अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है, वो समझे आई एम द बॉस और मैं कर सकता हूं, ये नहीं हो सकता है। एक बार एक बड़ा थाल मंगाया और वो थाल के अंदर बूंदी रखी, तो फिर क्या हो गया कि ये पांच अंगुली जो थी ना उसकी लड़ाई हो गई आपस में। तो ये अंगुली ने बोला कि मैं बड़ी हूं क्योंकि सबका मालिक एक है, ये अंगुली से ऐसे करते। इसने बोला मैं तो हुई बड़ी ना, तो मैं बड़ी हो गई। इसने बोला कोई भी अच्छा जो कार्य होता है ना, स्वस्ति करना, कुछ भी शुभ प्रसंग, तो यही हम यही अंगुली से करते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूं। इसने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ उठाया ना, इसी अंगुली से उठाया, तो मैं बड़ी। और इसने अंगूठे ने कहा मेरे बिगड़ तो कोई सही सिक्का होने वाला ही नहीं है, तो मैं बड़ा। अभी तभी कहा गया कि अच्छा जो थाल लाया था तो कहा कि अच्छा आज आप कहते ना अकेले है तो ये लड्डू बनाओ, कोई भी नहीं बना सका। जब पांचों ने मिलके ऐसे किया तब क्या हो गया, लड्डू बन। तो ये जरूरी है, कोई भी बात में हमको टीम स्पिरिट जरूरी है। और जब ये सब बात आ जाती है तो एस फॉर स्टार्ट द वर्क, तब आप अपना कार्य शुरू करो तो सफलता जिसको हम कहते हैं वो हुई पड़ी है। आप कोई भी कार्य दृढ़ता से करो, हमारे दादी जी कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो मैं तो यही कहेंगी कि आप लोग यहां से जाओ यही संकल्प लेके जाना कि सफलता मेरे जीवन में हुई पड़ी है, मुझे तो करण करावन हार परमात्मा है, मुझे निमित्त होकर के कार्य करना है। आप देखो कोई भी बड़ा कार्य करो आपको टेंशन नहीं होगा, जब आप ये सोचेंगे कि करण करावन हार वो है, मैं एक निमित्त होकर कार्य कर रही हुई है, तो कभी नहीं होगा। तो यही सोचो कि मेरा विजय हुआ पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है, मुझे सिर्फ ये कार्य करना है। तो सफलता के सितारे बनकर ही निकलना। एक हम कहते होता है उम्मीदवार सितारा, वो क्या सोचता है, करेंगे देखेंगे सोचेंगे तो बेचारे गे गे में रह जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता की आगे हम देखेंगे कि दृढ़ता की भी एक शक्ति है। तो कोई भी कार्य करना है दृढ़ता से करो तो सफलता जो है वो हुई ही पड़ी है। ओम शांति।
बहुत खूब योगिनी दीदी, शायद सफलता की पूरी चावी ही आपके हाथ में आ गई, एंड बहुत बड़ी गुह्य बातें हैं। लेकिन हम अनुभव भी जानते हैं कि क्या शर्मा जी आपने जो सफलता पाई है, और कल आप आपके निवेदन में कह रहे थे कि ये सफलता मैंने सिर्फ व्यापार में नहीं हमारे गृहस्थ जीवन में भी पाई है, तो क्या सिर्फ आध्यात्मिकता से ये सफलता आई या और कोई रास्ते से भी आपने ये सफलता पाई थी, आप बता सकते हैं हमें?
ओम शांति। वैसे सफलता तो बाबा कहता है हमारा विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा समझ के अपने को कैसे भी इस दुनिया में चलेंगे और ये समझेंगे मुझे सफल होना तो जरूर सफल होंगे। लेकिन सफलता के साथ में आपको क्रियाशील भी होना पड़ेगा और जीवन में कुछ धारणाएं भी रखनी पड़ेंगी। सफलता के लिए मैंने सबसे अच्छा देखा, मेरे जीवन में खुशी हमेशा रही है, पता नहीं क्यों थी, मैं एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में मेरी खुशी गायब नहीं हुई। लोग मुझे कहते यार तुम क्यों इतना क्यों हंसता है, अब मुझे पता नहीं क्या बात था हिसाब से। तो ये भी थी हिम्मत हमेशा रखी, विल पावर, मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, चाहे मैं कितना ही बीमार हूं कुछ भी हूं, करना है चलना है चलना है हिसाब से, बीमारी की परवाह ही नहीं की मैं, और उस परवाह न करने से शरीर अपने आप ही ठीक हो जाता है हिसाब से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नहीं हम हिम्मत रखें। बाबा कहते एक कदम हिम्मत का रखो, तो मैंने अज्ञान में भी देखा कि हिम्मत रखा तो पता नहीं कहां से कहां मेरे में परिवर्तन हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं आई एम द मेकर ऑफ माई फॉर्चून, मेरा कोई मैं नहीं कह सकता हूं उसने मेरे को हेल्प की होगी। मैं पढ़ा लिखा, एम कॉम एल एल बी किया, कलकत्ता चला गया, नाइन्थ में मेरी शादी हो गई थी, परिवार का भी था, पढ़ना भी था, परिवार भी चलाना था, और फिर ब्रह्मा कुमारी में भी आ गया और बिजनेस भी किया। जानता नहीं था बिजनेस क्या हो, मैं ब्राह्मण था वैसे ही, और बिजनेस मैंने इंडस्ट्रीज में गया, पहले पहले होजरी में, जो पता नहीं कैसे होगा। तो एक हिम्मत रख, मैं यही हिम्मत रखता हूं कि दूसरा कोई अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। एक आदमी कोई चीज में सफल होता है, वो सफल हो रहा तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, जरूर सफल होंगे अगर हम करेंगे तो। और मैंने देखा कि लाइफ में ईमानदारी जो है सच्चाई सफाई बहुत काम करती है। लोग तो कहते हैं हम इसको झूठ बोल के धोखा दे के उल्टा सीधा कर सकते हैं। मैं समझता हूं वो सफलता पता नहीं होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन सफलता नहीं है। सफलता का मतलब हर तरह से तभी होगी जब आप जीवन में सच्चाई सफाई रहेंगे, सबके साथ में व्यवहार आपका ठीक रहेगा, उसका बड़ा रिजल्ट आ जाता है हिसाब से। बहुत परिवार भी ठीक रहेगा जब परिवार में भी सच्चाई सफाई है, बच्चों में सफाई सफाई है। अब मैं मान लिया कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे पास पैसा अलग से कुछ नहीं रखता, मेरे दो बच्चे हैं, उनका बिजनेस है, पोते भी हैं, सारे बिजनेस करते हैं, एक जगह बिजनेस है, मैं करता भी कुछ नहीं, लेकिन मैं आज कहूंगा कि ऐसा करना है, वो ये मेरे से पूछेंगे नहीं क्यों करना है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा रहा है, अच्छा जीवन रहता है, सच्चाई सफाई का जीवन रहता है तो आपको कहीं डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती। डिफिकल्टी के तो कारण हम ही हैं, किसी को झूठ बोला, किसी को इधर कहा उधर कहा। अच्छा झूठ बोलने से आपको विचार चल लेंगे, उसको ऐसा कहा था, उसको ऐसा कहा था, अब विचार जो कहा था सच है, कभी भी कहा पूछ लो ये ठीक है, ये कहा था, हाँ कहा था हिसाब से। तो इसलिए ये कर रहे थोड़ी सी हिम्मत हो आदमी को सच बोलने की भी, नहीं कोई सच है बात ठीक है, उसमें थोड़ा नुकसान होता है और होता है वो दूसरी बात है। और इससे क्या होता है कि पर्सनलिटी भी बन जाती है आपकी, अगर आप जीवन में व्यवहार शुरू से ही चाहे स्टूडेंट लाइफ में चाहे बाद में तो वो व्यवहार काम करता है, नहीं ये तो आदमी ऐसा भाई, ये तो आदमी सच्चा है, इसके साथ तो काम करना चाहिए। तो बिजनेस सफलता का तो मेरा सबसे बड़ा रहस्य यही है, क्योंकि व्यापारी मेरे पास में एजेंट अगर कोई आता है तो मेरे से जा नहीं सकता वो बाद में, उसके साथ व्यवहार ठीक करता हूं, बातचीत ठीक करता हूं। कई दफा पैसे के लिए झगड़ा होता है यार तुम, फिर वो मेरे को कहेगा ब्रह्मा कुमार हो कि तुम ऐसा करते हो, मेरे को सोचना पड़ता है वास्तव ठीक है, तो थोड़ा घाटा खा ले में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो घाटा नहीं फायदा होता है, क्योंकि वो जाएगा कहां हमारे साथ, वो देखता है इनसे साथ काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो आध्यात्मिकता से अगर हम चलते हैं जीवन में तो बिजनेस में भी सफलता मिलती है, आपके साथ एक ऐसा सहयोगी मिल जाते हैं अपने आप ही। तो मैं आप बताओ कि ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद में 50 वर्ष में मैं यहां समझ जाऊंगा एक सरेंडर की तरह से काम किया सेंटर्स में, चाहे कलकत्ता हो चाहे यहां हो चाहे साउथ में, पहला ध्यान रखा कि बाबा का काम करना है, बिजनेस होगा सो होगा और बिजनेस में ओवर ऐप हुआ। तो आध्यात्मिकता से एक पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, फिर हमारे को ये नहीं सोचना पड़ता पैसा अरे होगा तो होगा, पैसा क्या है, दाल रोटी तो मिल रही है ना, अब दाल रोटी के अलावा हमें क्या चाहिए, एक लिमिट के बाद में पैसा फालतू है, आता है तो अच्छा है, नहीं आता दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए क्रेज करें रात दिन बीमारी लगाएं वो क्यों लगाएं हिसाब से। तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कर रहा है बिजनेस मेरे, जब शुरुआत किया मैंने तो बहुत से लोग थे हमारी फैक्ट्री वाले और भी कई थे, मुझे वो कहते थे शर्मा जी आप किसी का देखते नहीं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारा क्यों देखूं, मैं अपना देखता हूं, मेरा काम ठीक हो रहा है, आप क्या करते हो मैं क्यों जाऊं, ये करता मैं भी ये करूं, वो करता मैं भी ये करूं, मैं अपने आप सोचता हूं मेरा काम ठीक हो रहा है। तो वो खुश थे सारे के सारे। तो ऐसे अपने आप को कंसंट्रेट करने से और बाबा को साथ रखने से सबसे बड़ा जो जीवन में फायदा हुआ वो साकार बाबा से हुआ। अब मान लें हम समाज में भी जाते हैं, अब समाज में तो कई काम होते हैं कि गालियां भी खानी पड़ती हैं, तो मैंने देखा बाबा ने कितनी गालियां खाई, तो मैं हमेशा बाबा को साथ रखता हूं, बाबा ने कितना सहन किया, हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, तो इसलिए हमेशा खुशी रहती है। बाबा के समान सहन हम नहीं कर सकते, आप बताओ इतना बड़ा त्याग तपस्या किया, इतना सब कुछ समर्पण किया और लोगों ने गालियां दी, जो अच्छे अच्छे उनके दोस्त थे उन्होंने गालियां दी, सब अलग हो गए, लेकिन बाबा कहता मुझे चलना है इसकी कि हिम्मत देखो बाबा की कितनी थी। तो इसलिए दुनिया में आप चाहो कि सब आपसे खुश होंगे, सब आपको ठीक समझेंगे, हो ही नहीं सकता, कितने ठीक हो आप, कितने ईमानदार हो, कितने फिर भी कहेंगे नहीं नहीं ऐसा ऐसा ही, हम यहां चलते हैं तो लोग कई कह देंगे ये तो ऐसे ही चलते हैं फालतू का हिसाब किताब, ऐसे ही कह ब्रह्मा कुमारी जैसा ही कहेंगे ना लोग बाग, तो लेकिन हम राइट होकर चल रहे हैं उसकी सुनना ही नहीं है। अब बाबा से मेरी लास्ट में बात हुई थी ऐसे ही, मैंने बाबा से कोई शिकायत की, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ही होता रहता है। तो मैं जीवन में देखता हूं बहुत सी घटनाएं होती हैं, होती रहती हैं, चलता रहता है जीवन में, ऐसा उसमें इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, हमारे पास परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थिति क्या होता है, पेपर टाइगर है, हमारे पास कुछ नहीं साफ। तो बाबा ने भी सिखाया और कुछ ओरिजिनल मेरे से पहले से बाबा ने किया होगा साझी था, क्योंकि मैं शुरू में भी एकाकी रहा तो मैंने कहा कि मेरे साथ बाबा जो करेगा ठीक है, पहले भी अज्ञान में भी, और अब तो साथ बाबा मिला हुआ है। तो इस बाबा का जो साथ है, साकार बाबा का जो अनुभव है, उन्होंने कितना त्याग और तपस्या की, कैसे जीवन में किया, हालांकि इसके साथ में बहनों भाइयों ने बहुत से कर रहे हैं, लेकिन बाबा का तो कमाल ही था, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो आज तक मेरे को प्रभावित कर रहा है। यानी जो भी बाबा थे, बाबा कमाल कर दिया आपने, तो सोते उठते वही याद रहता है, अरे ऐसा भी नहीं मैंने कुछ छोड़ा है, परिवार के साथ रहता हूं, घर में साथ रहता हूं, बिजनेस में और मैं और समाज में सब जगह जाते रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं सारा ये तो खेल है, देखते रहो साक्षी होकर देखते रहो दुनिया क्या चल रही है क्या नहीं चल रही साथ।
तो ये साक्षी भाव है, परमात्मा का साथ है। और फिर ये होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, हमें पैसे से कितना क्या करना है। अब एक लिमिट है ना, लिमिट तक आता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं, परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां आज मेरे पास भी कई दफा आते हैं, कई दफा ऐसे ऐसे विचार आते हैं, फिर मैं कहता हूं बाबा ने क्या किया, तो बाबा तो परवाह ही नहीं करता, बेफिक्र बादशाह था बाबा, बेफिक्र बादशाह, संतुष्ट मणि था एकदम, कुछ फिक्र नहीं साहब से, यानी बेगरी का पार्ट था। और तो मैं आज तब तो अच्छा पार्ट था, बाबा का इतना नहीं था, फिर भी बाबा परवाह नहीं करता, बाबा बैठा है, कभी भी बात करो बाबा बैठा है। एक इतना बड़ा त्याग और तपस्या करके, इतना करके, फाउंडर होकर के, कभी मैं समझता हूं उससे लगता नहीं था कि इसने कोई त्याग किया, मतलब बाबा बैठा बस खुशी में मस्ती में रहता था, और मैंने किया ये लगता ही नहीं था। ये मैंपन का काम है ना, ये ज्यादा परेशान करता है बिजनेस में भी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मुझे ऐसा करना है, ये मैपन छुड़ाता है आध्यात्मिक। और मैपन छोड़ दिया तो मैं समझता हूं आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, घर में भी मैं क्या होता है, सारा ही ठीक है। ये मैपन जो है मैं ठीक करूंगा, मेरा बच्चा है, मेरा फलाना है, मैंने ऐसा किया है, ऐसा किया है, वही गड़बड़ करता है। मान लिया मैंने परिवार में सारा मैंने किया है, सारा किया है। आज मैं एक दफा मेरे पोते से जो बात हुई तो मैंने कहा कि भाई ऐसा मत समझो मेरा किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं मैंने किया है, किया था ठीक है, बच्चे संभाल लें संभाल लें, तो हमारा क्या है, एक ड्रामा में पार्ट था वैसे भी, लेकिन उसमें अधिकार से बात करूं तो बच्चे भी आपको नहीं मानेंगे, कोई नहीं समझेगा। अधिकार से नहीं करते हैं ठीक है, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक पार्ट है, चल रहा है हिसाब से। तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी सफलता का कारण है कि खुश रहना चाहिए हर हालत में। इस जमाने में मैं आपको बताऊं, मेरे को पता नहीं बाबा ने कितना खुश रखता है, चाहे सोते उठते बैठते, कभी तो थोड़ा सा भी आए ना, अरे हमें क्या मतलब, जाने दो छुट्टी, एक सेकंड में उसको करता कुछ, बाबा बेटा खुश रहे। तो खुश रहना है, ये आध्यात्म का ही सिखाती है, दूसरे सिखाते नहीं। नहीं तो मान ली इस उम्र में है, बूढ़े हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बीमार होंगे, कौन संभालेगा, कौन क्या कहे, अरे बाबा संभालता देखा जाएगा, अभी तो ठीक है ना, ठीक है, कल के कल देखे जाएगा हिसाब से। तो इतना बाबा का मतलब आध्यात्मिकता से कितना फायदा होता है ये देखो, हेल्थ का भी यही कारण है। मैं तो पहले बहुत ज्यादा बीमार रहता था, अरे बाबा अभी इंप्रूवमेंट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है हिसाब से, यानी वंडर देखो, 75 के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की और 83 में भी इंप्रूवमेंट कर रहा है, मैं फील करता हूं मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन का सा काम, फीलिंग नहीं करता मैं बुजुर्गों के हिसाब से। तो ये फीलिंग जो है ना, ये आध्यात्मिकता ही कर सकती है और ये वातावरण कर सकता है। हमारे साथ इन बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में ये जो मिल रही है दुआएं है ना, ये बहुत काम करती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद में बेहद में चले गए, हद से हट गए ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हद के बाद में बेहद में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, सफल भी होंगे। सफलता होती है दुआओं से, चाहे आप बिजनेस में समझो, चाहे घर में समझो, रहने में समझो, बहुत बड़ा कारण है ये, कर्मों का हिसाब किताब है। और कर्म श्रेष्ठ होंगे दुआओं से। तो मैंने अपने लाइफ में देखा कि दुआएं खूब मिल रही। अब ऐसे पवित्र आत्माओं की, बहनों की, सारे इंडिया की, वर्ल्ड की दुआएं मिल गई, कम है क्या? तो शुरू से मेरा संपर्क खूब रहा है हिसाब से। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि कमाएंगे और अच्छा भी कमाएंगे, सबका अपना भाग्य होता ही है, भगवान मिला है, भाग्य हमारा है ही है, लेकिन आप संपर्क में बेहद में रहें, संपर्क में रखें, सेवा का बहुत बड़ा काम है बाबा का, इससे बड़ी आशीर्वाद मिलता है। आप किसी भी आत्मा को थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसके परिवर्तन से अब मेरे को कितनी खुशी हो रही है इस ज्ञान के द्वारा, नहीं मिलता तो नहीं होती है ना, आपको भी कितनी खुशी हो रही है जो मिलता है। तो सेवा भाव से भी आपको दुआएं मिलती हैं, क्रियाशील रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरी समझ में मॉर्निंग में 3 बजे मेरे को बाबा 3:30 बजे रोज उठाता है, ये वंडर है ना उसका। मैं समझता हूं कभी नागा हुआ है, मेरे को ध्यान कमी रहता है, कभी कोई हो गया शरीर पर हुआ लगता नहीं ऐसा है, यानी उस समय जरूर उठाएगा, बाद में चाहे रेस्ट करो, 3:30 बजे उठकर। तो क्रियाशील आज भी हूं इस उम्र में भी, ऐसा नहीं भाई ठीक है क्या होता, तो यहां पर क्रियाशील भी बन जाते हैं और खुशी भी होती है। ऐसा नहीं भाई धर्म के बाद में जाने के बाद में चलो वो बन गया, नहीं क्या करना है, पड़े रहो, कोई ऐसा हो गया, इससे ज्यादा एक्टिव होता है आदमी, मैंने तो ये देखा एक्टिव है। और संपर्क भी अच्छा रखना पड़ता, आपको परिवार से भी अच्छा संपर्क, ज्यादा जिम्मेवारी होती है। अभी तो मान लिया घर वाले भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार हो गया, इसने क्या कर दिया, देखो घर ही बर्बाद हो गया, कहेंगे ना आप, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, व्यवहार भी ट्राई। अब तो मान लिया घर से युगल भी कह देगी थोड़ा गुस्सा आता है, मैं आश्रम में जाते हो और आप गुस्सा करते हो, यानी अभी हमको ठीक करने वाले दुनिया भी है और वैसे भी बाबा भी ठीक कर रहा है। मुझे आपको आश्चर्य होता है कि मेरा पोता है ना, उसके फादर को एक दिन थोड़ा सा जोश से बोल गया, वो कहता है इतना जोश से क्यों बोलते हो आप, शांति से बोलो ना, तो वो कहता है कमाल कर दिया, यानी परिवार में इतना असर, जो पोता कहता है अपने फादर को कि तो आप इतने जोर से क्यों बोलते हो, तो मेरे को कहता है इसने तो मेरे को अच्छा सबक दिया हिसाब से। तो ये एक वातावरण जो बन जाता है परिवार का, तो बच्चों का रखे पर बहुत असर पड़ता है। बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे अगर आप घर में अपने बाबा के हिसाब से रहेंगे, उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे, बच्चे बिगड़ नहीं सकेंगे। साहब मैं आपको चले, मेरे तीन पोते हैं, तीनों दो MBA है, एक अभी सीए कर रहा है। उनकी नेचर ही बहुत अच्छी, हर तरह से नेचर अच्छी, लेकिन क्या था कि हम पालना करते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से रहना करना, और फिर हम कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं भाई ये झूठ बोल दिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। मैं बाहर का नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं, आज तक नहीं खा रहा हूं, जब से आया तो उसे नहीं खाता हूं। तो हम अगर सिद्धांत पे और ढंग से बाबा के श्रीमत पे चलते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आपका कहीं भी कुछ कमी रहे, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं कहता हूं बाबा ऊपर से देख ही रहा है, हमारा बाबा साथी है, तो उसको साथी बना करके आप इंजॉय करो लाइफ को। मैं तो ये मानता हूं लाइफ इंजॉय करनी है इस समय, कलयुग के वातावरण में हम खुश रहे हैं और क्या चाहिए साहब से बात। लोग देख के खुश रहे तो ये भी आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपको देख के वहां खुश होंगे लोग, अरे इनको क्या मिल गया, क्या टर्न मिल गया ऐसा, लोग कहेंगे क्या मिला था, ये आशीर्वाद का काम करता है। तो इसलिए आशीर्वाद लेकर के, दुआएं लेकर के, और आप अपने आप को सफलता मिली हुई है हर तरह से, आपको सफलता के लिए बाबा मिल गया और आपके जीवन में परमात्मा का काम आप मिल रहा है, परमात्मा आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या सफल होगा, नहीं होगा। तो सब सफल हुए कि नहीं आप लोग, आपको भगवान मिला है सबको, नहीं मिला अभी डाउटफुल केस है, जहां हाथ उठाओ किसको मिला नहीं किसको, सबको मिला। परमात्मा जिसके लिए दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है, उसके लिए वो आपका साथी बन रहा है, इससे ज्यादा क्या भाग्य होगा, इससे ज्यादा क्या सफलता होगी। मैं समझता हूं आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत अच्छे हैं, जो यहां तक पहुंचे परमात्मा को पहचान लिया, जो आप और हम सभी सफल हैं। ओम शांति।
शर्मा जी धन्यवाद। शर्मा जी ने तो पूरा प्रैक्टिकल में ज्ञान अतः से इति तक बजा दिया कि कैसे सफल बने, न केवल व्यापार में लेकिन गृहस्थी में भी रहकर। और वो जो बाबा की बात करते हैं वो और कोई नहीं, हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, और जो साकार बाबा कहते हैं वो और कोई नहीं, हमारे ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर है, जिसके बारे में कल आपको जो संस्था का इतिहास हमारे राजू भाई जी बताएंगे उसमें पूरी क्लैरिटी हो जाएंगी। लेकिन ये बात सत्य है कि आध्यात्मिकता से जो आपको शक्ति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जो प्रैक्टिकल सूझबूझ मिलती है, इससे अल्टीमेटली क्या मिलता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और वो एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी। एंड यही एक वरदान समझ के आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी खुशी और कितनी सफलता। तो सफलता जो मैंने कहा शुरुआत में वो सफलता नहीं, यही सच मायने में एक सफलता रखती है। तो इसको आगे ले चलते हम पूछते हैं कि सच में अगर ये सफलता है और इसी को मान के अगर हम चलते हैं कि ये मेरी सफलता है और मुझे व्यापार में परिवर्तन करना है, तो मेरे पास में टूल्स क्या है, मैं थोड़ी रफ बात करूं तो मेरे पास में साधन क्या है, तो वो है परमात्म शक्तियां। वो परमात्म शक्तियां क्या है और वो मुझे कहां मिलेगी। तो पहला प्रश्न है कि वो परमात्म शक्तियां क्या है, वो हम योगिनी बहन से जानेंगे, और वो परमात्म शक्तियां कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम गीता बहन जी से पूछें। कल तो नहीं है, तो योगिनी बहन से मैं पूछना चाहूंगा कि ये परमात्म शक्तियां है क्या।
परमात्म शक्ति जिसके ऊपर तो हम आज सुबह से भी सारा सुन रहे हैं, कल शाम को भी सुना, क्योंकि ये शक्ति सर्वशक्तिमान से हमें कैसे मिलती है, तो जैसे कल शाम को भी बताया कि योग माना आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं योग, राजयोग। तो योग खुद एक शक्ति है, और जैसे हम करते जाते हैं हमारे अंदर ये शक्तियां जो है वो आती जाती है, और ये सारी शक्तियां प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे बिजनेस और इंडस्ट्री में, हर जगह हमारे को यूज करने का करना ही पड़ता है। नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे सबको पता है कि भाई स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये शक्तियां कौन सी शक्तियां हैं आपको, जैसे गीता बेन ने बोला कि जो सत्र है शिविर है उसमें तो कराया ही जाएगा, शॉर्ट में मैं बताती हूं। हम कहते हैं मुख्य 8 शक्तियां हैं, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति जिसको हम कहते हैं। जैसे कछुआ है वो सारा फैलावा करता है, पर समय पर क्या करता है, वो समेट लेता है ना। आप अपना बिजनेस संभालो, घर संभालो, व्यवहार संभालो, आप सब कुछ करो, लेकिन समय पर अरे मेरा ये रह गया, मेरा वो नहीं, रात को आप आराम से नींद कर सको। तो विस्तार भी करो संकीर्ण भी करो, जिसको हम कहते हैं पावर टू विथड्रो। दूसरी जो शक्ति है जिसको हम कहते हैं समेटने की शक्ति, जीवन में बहुत जरूरी है, पावर टू पैकअप। आज हम एवर रेडी है, बोलने में हम बोलते हैं अरे सिकंदर जैसा, सिकंदर भी खाली हाथ गया, हम अकेले आए अकेले जाना है, ये दुनिया तो मुसाफर खाना है। तो हमारे अंदर ये ट्रस्टीशिप की भावना है, हम ये समझते हैं कि ये हमारा घर नहीं है। आप यहाँ आए चाहे कहाँ भी दुनिया में जाएंगे, पर आपको मालूम है वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अलग है जहाँ आप जाते हो। तो यहाँ भी हम एक पार्ट बजाने आए, जो हम सब एक दो को मिले हुए हैं, लेकिन मेरा असली घर कहाँ है। आज कोई ये बतावे भाई सबका रिटर्न टिकट है, कोई बोले मेरी सिंगल टिकट है तो हाथ उठाओ, है सिंगल टिकट के रिटर्न टिकट है, सबकी रिटर्न टिकट है, सबको जाना ही है। तो समेटने की शक्ति जो है वो हमारे अंदर कैसे आए, जरूरी है बहुत जीवन में, वो आती है योग के द्वारा, मेडिटेशन से। उसी तरह से हम कहते हैं पावर टू टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति। अब थोड़ी कम है दो भाई अलग हो जाते हैं तुरंत, राय कितना हम बड़ी बात कर देते हैं, परंतु ये शक्ति जरूरी है। आप देखो एक मूर्ति भी पूजने लायक कब बनती है, शिल्पी उसको ठोक 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 करता है तब वो मूर्ति है, वो पूजने लायक बनती है। उसी तरह से हम कहते हैं समाने की शक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। कभी कभी हम राय जैसी बात का पर्वत कर देते हैं, बहुत बड़ी बात कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आज देखो समुद्र जो है वो हर कचरा, मुंबई में बहुत बड़ा सागर है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर सब कचरा समाता ही जाता है, समाता ही जाता है, सब कचरा समा लेता है वो, लेकिन बाहर क्या निकालता है, रत्न निकालता है। तो हमें क्या करना है, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, कोई न कोई गुण क्वालिटीज है, कोई न कोई विशेषता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे वो कहते हैं कि किसी के अंदर 99 अवगुण हो और एक गुण हो ना, तो आप यही गुण और इसकी विशेषता से उसको चलाओ। और सचमुच उन्होंने ऐसा किया तब आज ये सक्सेस है। तो ये बहुत जरूरी है कि हरेक की विशेषता को मुझे देखना है। उसी तरह से परखने की और निर्णय करने की शक्ति, आज सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए ये शक्ति की बहुत जरूरत है। आपके अंदर यदि परख शक्ति नहीं है तो सामने वाला आपको क्या करेगा, धोखा देके चला जाएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति निर्णय ही नहीं लेता है, एक दिन दो दिन चार दिन पता नहीं, नहीं जो योगी योग करता है उसकी निर्णय शक्ति जो है वो पावरफुल होती है। तो ये दोनों शक्ति भी जरूरी है। और है सामना करने की शक्ति। आज जिस सिचुएशन में देखो दुनिया में बहुत समस्या है, एक समस्या हल करो दूसरी, दूसरी को हल करो तीसरी खड़ी हो जाती, वो तो हम रोज पेपर में पढ़ते हैं तो देखते ही है ना। तो बिजनेस और इंडस्ट्री उसमें कोई अपवाद तो है नहीं, उसमें भी बहुत समस्याएं है। तो सिचुएशन तो आती है परंतु सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, ये हमारे अंदर योग से आती है। कैसे हमको सामना करने की शक्ति को यूज करना है। देखो हम कहेंगे क्यों हुआ, किस लिए ऐसा, तो वाई व्हाट और हाउ, ये क्वेश्चन मार्क टेढ़ा ही है, क्यों क्या और किस लिए। लेकिन हो गया जो चीज उसको हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ की बात है ही नहीं, वो हो गया है ना, पास्ट टेंस हो गया ना, तो उसको फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होता है। तो सामना करने की शक्ति जिसको हम कहते हैं, उसी तरह से सहयोग शक्ति, तो सहयोग के अंदर योग जो है वो समाया हुआ है। हम तो आज यही कहेंगी और कोई आप सहयोग नहीं दो, एक सहयोग जरूर दो जो ये टॉपिक ही है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है। मैं परिवर्तन का सब्जेक्ट है ना, व्यक्ति परिवर्तन, मैं और किसी को नहीं देखूं, मैं मेरा ही परिवर्तन करूं। तो व्यक्ति से ही तो हम कहते हैं फैमिली बनता है ना, परिवार, परिवार से ही गांव, शहर, देश और विश्व बनता है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जरूरी है। स्व परिवर्तन जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। एक बार अकबर और बीरबल थे तो अकबर ने कहा कि अपने गांव में कितने ऑनेस्ट लोग हैं ना, वो मुझे देखना है। तो बीरबल ने कहा ठीक है, एक बड़ा तालाब खुदवाया और बोला रात को आके सब एक एक लोटा दूध का डाल के जाना। एक को आया कि सभी तो दूध ना डालने, दूध का डालने ही वाले हैं ना, मैंने यदि एक ने पानी का डाल दिया तो किसको पता नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसको विचार आया, ऐसा सबको ही आया, तो दूसरे दिन क्या हो गया, सुबह को क्या हो गया, तालाब किसका हो गया, पानी का। तो 1+1+1=3 होता है, तो एक एक की वैल्यू है। इसलिए हम और कुछ नहीं करें, मैं मेरा अपना ही स्व परिवर्तन करूं, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिवर्तन करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम मानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन शक्ति जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु परिवर्तन करे तो करे कैसे, उसके लिए और एक शक्ति की आवश्यकता हो जाती है, वो हम कहते हैं रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। हम गलती करेंगे, भूल करते रहेंगे, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करने वाले। इसीलिए महसूसता की शक्ति भी बहुत जरूरी है। और परिवर्तन शक्ति, अरे परिवर्तन हम तब कर सकेंगे जब हमारे अंदर क्षमा की शक्ति होगी। क्षमा भावना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये बहुत जरूरी है। ओम शांति।
हमने जाना कि शक्तियां क्या है और उसका विस्तार जैसे गीता दीदी बता रही थी कि कल सुबह के राजयोग के सत्र में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन दीदी, गीता दीदी, आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि वो शक्तियां हमें मिलेगी तो कहां मिलेगी, बिकॉज हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। सफलता चाहिए वो परमात्म शक्तियों द्वारा, परमात्म शक्तियां क्या है जाना, हमें मिलेगी कहां, और फिर हम बात करते हैं कि परिवर्तन कैसे करें। तो संक्षिप्त में बताएगी मिलेगी कहां और उसे कैसे प्राप्त करें।
हम सभी भक्ति में भी गाते रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ये तो हम सबको स्पष्ट है ही कि संपूर्ण शक्ति तो परमात्मा पिता से ही हमें प्राप्त होती है, उसको ही हम ऑलमाइटी कहते हैं। इसलिए जब हमारा उनसे योग लगता है, कनेक्शन होता है, संबंध जुटता है, तो ऑटोमेटिक हम एम्पावर होते हैं। जैसे बैटरी चार्ज होती है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा की याद से रिचार्ज होती है। वैसे तो हमें हर महान आत्मा से कुछ न कुछ एम्पावरमेंट मिलती है, जितने अच्छे संग में हम रहते हैं तो उससे हमें पावर मिलती है। परंतु सत्यता ये है कि समय और परिस्थिति के प्रभाव में आकर, चाहे देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, मतलब हर मनुष्य आत्मा अब कलयुग के अंत में तमो प्रधान पतित बन जाती है, तो नेचुरली उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अल्टीमेट सोर्स परमात्मा को ही कहते हैं कि वो ही इटर्नल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब हम उनसे लिंक होते हैं तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव पावर हमें मिलता जाता है।
यदि आप समाप्त करें उसके पहले, गीता दीदी आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी शक्तियां ज्यादा हमें व्यापार में उपयोगी हो सकती है, आप रिलेट कर सकते हैं?
हम व्यापारी हैं पर व्यक्ति भी हैं, परिवार में भी हैं, तो जीवन के चार एस्पेक्ट हैं। एक तो हम खुद सेल्फ, हम स्वयं हैं। दूसरा, हम रिलेशन से बंधे हुए हैं, परिवार, समाज, देश, तो हमारे रिलेशन से भी हम हैं जुड़े हुए। तीसरा है हमारा वर्क, बिजनेस, जो भी कहो, उससे हम जुड़े हैं। और चौथा है परिस्थितियां, जो अचानक भी आती है, किसी के तरफ से भी आती है, प्रकृति से भी आती है, तो आतंकवाद, उग्रवाद, मानव सर्जित परिस्थितियां भी आती हैं। तो अगर हमें रिलेशन में एम्पावरमेंट करना है, संबंधों को मधुर और मजबूत करना है, तो जैसे योगिनी बहन ने बताया, वो टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट पावर चाहिए, सहनशीलता और सामंजस्य, एडजस्टमेंट की पावर। तो इससे हम अपने रिलेशन को निभा भी सकते, बचा भी सकते, ब्रेक नहीं होगा और उसमें हम चल सकेंगे। फिर जो वर्क है, बिजनेस से है या जिसका जो भी कार्य क्षेत्र है, तो उस कार्य क्षेत्र में अगर हमें सफल होना है तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए। अगर हम सही नहीं परखते हैं तो हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, लेबर सब वेस्ट जाता है। तो ये परखने की शक्ति चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर। कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कंफ्यूज होते हैं, विवरिंग माइंड की स्टेज होती है। तो निर्णय शक्ति ये दो कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए चाहिए। और जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है, तो पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, माना आंतरिक हमारी इतनी पावर हो कि हम हिल न जाएं, लेकिन हिम्मत से सामना कर सके, और कॉपरेशन, जब हमारे में सहयोग की भावना है और शक्ति है, हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो ऑटोमेटिक हमें भी मिलता है जब हमें आवश्यक होता है। तो परिस्थितियों को फेस करने के लिए ये पावर टू फेस एंड कॉपरेशन की चाहिए, और सेल्फ को एम्पावरमेंट के लिए ये पावर टू विथड्रॉ, जब समय मिले सब बातों से न्यारे हो जाइए और स्व में स्थित हो जाइए, उस पिता से अपने को जोड़िए। तो बार बार ये डिटैच होना, मन समेटना और साक्षी होके देखना, तो इससे भी हमारे में एम्पावरमेंट होती है। क्योंकि कई बार हम बात हो गई उसके बाद भी सोचते ही रहते हैं, उस बात को छोड़ते नहीं हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति खर्च हो जाती है। तो ये पावर टू विथड्रॉ, न्यारा होने की शक्ति, अपने आप को सार में स्थित करने की शक्ति। और दूसरा है पावर टू पैकअप, जो वेस्ट है वो निकाल दे, जो जरूरी है वहां फोकस हो जाए। तो ये है पावर टू पैकअप, कि वेस्ट थॉट्स, वेस्ट इंटरेस्ट को निकाल दे, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाते हैं। तो ये दोनों अभ्यास ऐसे हैं जो स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं।
बहुत खूब दीदी, ये मेरा अपना भी अनुभव है कि अगर परख शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों को साथ साथ में लेके चलना है, और वही व्यापार में सफलता है। आध्यात्मिकता के लिए कई शक्तियों की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर मैं कल देखूं, मैंने परख लिया, अगर मैं शेयर मार्केट में हूं और देखा कि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है या करने वाली है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैंने परखा, लेकिन अगर उसे मैंने खरीदा नहीं और 10 दिन के बाद में मैं देखता हूं कि ये तो शेयर का भाव डबल हो गया, क्योंकि मैंने निर्णय नहीं लिया था वो नहीं चलेगा। मुझे परखना भी है, निर्णय भी लेना है, दोनों को साथ में करना है। वैसे तो कई शक्तियां हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये राजयोग की पूरी शिक्षा है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से मैंने बताया कि हम ये राजयोग, सहज राजयोग क्यों करते हैं। हमें मनुष्य से देवता बनना है, हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब तक हम ये बन रहे हैं, तो ये राजयोग का सार क्या है? हम ये सभी शक्तियों को धारण करें और ये सभी अष्ट शक्तियों को धारण करें। हम देवियों को देखता है, उनके आठ हाथ दिखाते हैं, चार लेफ्ट चार राइट। सच में कोई देवियां होती है ऐसी आठ वाली? नहीं ना। वो ये इन अष्ट शक्तियों से एम्पावर्ड है, यही उनकी अष्ट शक्तियां है जिससे हम वो देवियों की शक्तियों के लिए पूजा करते हैं। तो एक आखिरी एक सवाल मैं योगिनी दीदी से पूछना चाहूंगा कि क्या यही अष्ट शक्ति है या कोई प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये भी शक्ति है और वो प्रैक्टिकल में सच में काम आती है क्या?
शक्तियां तो अनेक है, और जो प्रेम की शक्ति, और कौन सी बताई, सत्यता की शक्ति, ये सब शक्तियां तो हमारे जीवन में जरूरी है। अभी प्रेम की शक्ति की जब बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहेंगी कि सबसे बड़ी शक्ति जो है वो प्रेम की ही शक्ति है। ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने भी ये सबका जीवन जो परिवर्तन किया, वो सिर्फ यही एक ही शक्ति अप्लाई किया, प्रेम की शक्ति से ही इतने अनेकों का जीवन का परिवर्तन किया है। हमारे जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 1936 में स्थापना हुई, कभी भी पिताश्री ने किसी को भी नहीं बोला है कि ये छोड़ना वो छोड़ना, अलग अलग सब बड़े घर से आए, अलग अलग परिवार से आए, परंतु हरेक को उन्होंने, आज देखो 300 लोगों में से आज आप देखो कि वो हमारी दादियां जिसको हम कहती है कहते हैं, और वो दादियां भी वही प्रेम से ही सबको समझाती रहती है और प्रेम से परिवर्तन करती रहती है। और इसी का ही ये कारण है आज 8,500 सेंटर जो है वो सिर्फ ये प्रेम की शक्ति के कारण ही हुए बने हुए हैं। तो मैं तो ये अनुभव से आपको बता सकती हूँ कि बहुत प्रेम से दादियां हम लोगों को भी जो पालनाएं देती है। आज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रकाशमणि दादी जी थे, 1997 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दादी जी इतना प्रेम से, कोई भी बात हो प्रेम से ही दादी जी हमेशा समझाती थी। खुद दादी जी एक बार शिकागो में गई, तो वहां वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियन कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, विवेकानंद जी को 100 साल पूरा हुआ था, तो लेडीज में सिर्फ दादी एक ही थी। तो जब दादी वहां पहुंचे तो काफी जर्नलिस्ट लोग भी आए हुए थे, तो दादी से सवाल किया कि दादी जी आपके शिष्य कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं? तो दादी जी ने कहा मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है। तो दादी जी के आजू बाजू 15-20 बहनें खड़ी थी, तो बोला ये सब जो आपके आगे पीछे खड़े हैं वो सब कौन है? तो बोला ये सब मेरे लीडर है। तो उन्होंने सबको लीडर बनाया, खुद ही जितने थे सब, आज जितने सेंटर है सब बहने है भाई है, वो एक लीडर होके अपने अपने सेंटर जो है वो चला रहे हैं, और अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने के लिए वो नियमित बने हुए हैं। इसी तरह से मैं आपको, अभी हमारे जो जानकी दादी 98 की उनकी एज है, थोड़ी तबीयत ठीक न होने के कारण अभी वो अहमदाबाद में है, नहीं तो आपको यहाँ जरूर दादी जी मिलते ही थे। वो दादी हमको हमेशा प्रेम से सिखाती है, आप एक्टिव रहो, सदा अलर्ट रहो, एक्यूरेट रहो, और वो खुद हमेशा रहती है। और सबसे बड़ा प्रेम की शक्ति के साथ उनके पास दृढ़ता की शक्ति है। कोई भी कार्य करते हैं दादी जी दृढ़ता से करते हैं और सफलता उस कार्य में होती ही है। एक बार मेरे पास, हम जहाँ रहते हैं मुंबई में, वहाँ एयरपोर्ट नजदीक है, पार्ला में रहते हैं, तो आना जाना दादियों का हमारे पास, कहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड में तो मेरे पास आते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट रात को आती है तो सुबह को फिर जाते हैं। एक बार दादी जी हैदराबाद जाने के लिए मेरे पास आए, तो मई का मास था और बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा दादी पेपर में आया है वहां बहुत हॉट वेव्स है और बहुत लोग मर गए हैं ना, आप नहीं जाओ तो अच्छा है। तो मेरे को सीधा जवाब दिया, गर्मी मेरे को क्या करेगी, ऐसा। तो मैं तो चुप हो गई। तो फिर और दादी जी तो गए और जैसे उसका प्लेन हैदराबाद में लैंड हुआ, जोर से बारिश आई और ठंडक हो गई। तो कहने की बात यह है कि देखो ये कैसे प्रेम, उनको जाना था, बोला मेरे लिए वहाँ 5,000 लोग हैं तो मुझे जाना है। ऐसा ही एक एग्जांपल आप सबको मालूम है कि मुंबई में 96 में बहुत बारिश आया था, पानी सब जगह भर गया, घरों में भी आ गया था, तभी भी दादी जी मुंबई में थे तो दादी बस इतनी बारिश आई, दादी बॉम्बे से, उनका पुणा में प्रोग्राम था तो वो गई, वो लास्ट प्लेन पुणा का था और दादी पुणा में गई। वहां से सब लोगों ने बोला अभी दादी पुणा से दिल्ली, उनको तो लंदन जाना था, पुणा में भी दादी प्रोग्राम करने के लिए गई, सबने बोला दादी जी अभी आप कैसे जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, लेकिन दादी जी वहां पुणा में भी गई, पुणा में सब कुछ प्रोग्राम किया और उसका भी लास्ट फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ा, फिर वहां भी पानी भर गया, वो अपने टाइम पर पहुंच गई वहां। तो देखो वो जब हम करें, खुद की एक प्रेम की भावना होती है, दृढ़ता की शक्ति होती है, तो एक कार्य में सफलता मिली जाती है। ऐसे हमारी हृदय मोहिनी दादी जी भी कल आपको मिलेंगे, तो आप देखेंगे जब उनको, उनकी आंखों से ही आप देखेंगे कि कैसे अमृत की धारा, अमी वर्षा उनके अंदर से आपको दिखाई पड़ेगी। तो प्रेम से वो हमेशा हमारी सब दादियां, एक हमारे निर्मल शांता दादी जी थे, तो एक बार पार्ला में आए, मैं बताती हूँ कैसे हम लोगों को सीखने को मिलता है, सिंपल बात पर जीवन में सीखने को मिलती है। तो किचन में ऐसे चक्कर लगा रही थी तो दूध गैस पर था वो उबल गया, कोई बहन कर रही थी, दूध बाहर आ गया। तो जैसे हम तो कभी बोल देंगे अरे क्या है आपको समझ नहीं है, दूध को उबाल दिया, कुछ भी बोल देते। दादी ने इतना प्रेम से बोला, कहना था वो कह दिया, बोला अरे रे अभी से सत्युग की दूध घी की नदियां बहने लगी है, तो कह तो दिया जो कहना था वो कह दिया, लेकिन देखो भाषा में फर्क होता है। तो ये प्रेम से वो कहा तो समझने वाले भी समझ गए। तो ये प्रेम की शक्ति के साथ जैसे बताया सत्यता की शक्ति, आज ब्रह्मा बाबा कितने लोग उस समय कोई भी कार्य आप शुरू करो तो थोड़ा तो सामना करना ही पड़ता है, लोग अगेंस्ट हो ही जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। आज गांधी जी ने पर हम देखते हैं ना सत्य और अहिंसा के ऊपर ही तो क्या किया, स्वराज्य दिलाया ना, तो सत्यता की शक्ति भी इतनी बड़ी है। और देखो वैसे तो मैं कहेंगी कि आप बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आप लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हो या बिजनेस करते हो तो आपका, आपको कितने पावर चाहिए, कौन से पावर चाहिए? एक आपको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, बरोबर, आपकी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक पावर बिगर नहीं चलेगी, चाहिए। अच्छा मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। दूसरा आपको कौन सी पावर चाहिए? मनी पावर चाहिए। पैसे बिगर तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे, मैनेजरों को पगार देना, ये करना वो करना, जो भी एम्प्लॉय को देना, तो मनी पावर भी चाहिए। तीसरा मेन पावर भी चाहिए, क्योंकि मेन पावर बिगर भी आप कुछ कर नहीं सकेंगे, मैनेजर चाहिए, जो भी इंडस्ट्री चलाने के लिए लोग चाहिए वो तो चाहिए। तो ये तीन पावर तो है, लेकिन उसके अलावा ये जीवन को चलाने के लिए और एक चौथा पावर चाहिए, और वो जो पावर है वो है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। फिर बात यही आती है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। मैं आपको बताऊं कि ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेम से कैसे परिवर्तन, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे जो हृदय मोहिनी दादी जी है, यहाँ ही है, कल मिलने वाले हैं, तो दिल्ली में उनके पास एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट गए और दादी ये सुनाती है, तो वो गए और उन्होंने कोर्स किया और दादी जी से मिले अच्छी तरह, तो कहा अभी हमारे सारे एम्प्लॉय को भी आप कोर्स करा दीजिए। तो सारे उनके इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉई भी आने लगे। फिर दादी जी एम्प्लॉई को एक बार मिली कोर्स होने के बाद, तो जब दादी मिल रही थी तो वो सारे उनके जो कर्मचारी थे एम्प्लॉई वो दादी जी को कहने लगे कि दादी जी हमारा जो मालिक है ना, हमारा जो बॉस है ना, उसको भी बोलो ना आप रोज आए, आपने हमको बोला उसको भी बोलो आए। तो दादी जी ने बोला आप तो अपना करेंगे, उनके लिए आप लोग क्यों बोल रहे हैं। तो कहने लगे दादी जी ऐसा है कि जब पहले ये करने के पहले हम वो हमारे पास घूमने आते थे, मतलब इंडस्ट्री में राउंड लगाने आते थे, तो हम लोग इतने डरते थे कि हमको लगता था कोई काल आया है, और जब से उसने ये कोर्स किया है मेडिटेशन कर रहे हैं तो अभी आते हैं तो हमको लगता है हमारा बाप आया हुआ है। तो कहां काल और कहां बाप, तो कितना परिवर्तन उसके अंदर हो गया। तो ये प्रैक्टिकल है कि ये परिवर्तन जीवन में आ जाता है।
धन्यवाद योगिनी बहन। समय हमेशा कम पड़ता है, ये हमारे महारथीज और अनुभव की ऑथोरिटी वाले जो वरिष्ठ भ्राता और बहने हैं उनके पास में खजाने पड़े हुए हैं और कई सारे उदाहरण हैं कि जिससे हमको बहुत ही कुछ सीखना है। तो हमने जाना कि सफलता क्या है, हमने ये भी जाना कि परमात्म शक्तियां क्या है, कहाँ से मिलेगी, और उसको हमारे व्यापार में कैसे हम यूज करके हम सफलता पा सकते हैं। तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम तीनों पैनलिस्ट को बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना समय नहीं है दीदी, हाँ, तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। और दीदी कहती है कि अगर आप में से अगर किसी को कुछ प्रश्न हो जो आप पूछना चाहे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। शर्मा जी आपको पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज है, आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर।
मैं तो ऐसे बनियान बनाता हूँ, मेरा एक कलकत्ते में तो है सिंड्रेस साग ब्रांड, और साउथ में त्रिपुर में फैक्ट्री है कोयम्बटूर के पास में सीबा के नाम से, वो ज्यादा मेरा माल राजस्थान और उधर एमपी साइड में उधर में चलता है।
और किसको कोई प्रश्न हो, कुछ मन में दुविधा हो और पूछना। यस ब्रदर, गीता दीदी आप सुना हो बता सकते हैं। उनका ये प्रश्न है कि जो उत्तरांचल में जो दुर्घटना हुई या उसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे उसमें।
ये जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, प्राकृतिक आपदाएं, वो भी आप सब जानते हैं कि जो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है पर्यावरण का, जो असंतुलित तो हो जाना, वो ही मुख्य कारण है। और पर्यावरण जो हमारा पॉल्यूट हो गया और इम्बैलेंस हो गया, उसके पीछे भी कारण हम मनुष्य आत्माओं के कर्म ही है ना, क्योंकि हमारे अंदर जब स्वार्थ लोभ लालसा आती है, स्व केंद्री हम हो जाते हैं, तो फिर दूसरों का नहीं सोचते हैं। और इस प्रकार से प्रकृति का जो दोहन हमने किया, इससे ही ये सारा प्रदूषित भी हुआ और इम्बैलेंस भी हुआ। तो जो हमारे कुछ सामूहिक सामाजिक कर्म होते हैं, उसका प्रभाव फिर हर आत्मा पर आता है कि जो भी उसका शिकार बनेगा तो उसको इसका फल भोगना पड़ता है। जैसे कई सामाजिक कर्म ऐसे होते हैं कि गलत है पर हम बोलते भी नहीं हैं, विरोध भी नहीं करते हैं, तो ये जैसे कि हमारी मुक सहमति होती है और इस प्रकार उसका फल हम सबको फिर भोगना पड़ता है। तो अल्टीमेट तो हम मनुष्य आत्माएं ही जवाबदार है, प्रकृति पशु पंछी हमें फॉलो करते हैं। जब हम अच्छे हैं तो वे भी सात्विक हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हैं। जब हम अपने नियम संयम तोड़ते हैं तो प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहती है। तो अल्टीमेट तो कर्मिक अकाउंट ही इसको कहेंगे, जो सामाजिक और सामूहिक हमारे इस प्रकार के कर्म होते हैं।
एक शिष्टाचार है कि सेशन खत्म होने के पहले हम परमात्मा की याद में बैठ के फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे।